नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण उद्बोधन पर बात करेंगे। शीर्षक है धर्म तंत्र की गरिमा एवं महत्व।
जी, और ये एक तरह से जवाब है उस सवाल का जो उनसे अक्सर पूछा जाता था कि वे राजनीति में क्यों नहीं आए।
हाँ बिल्कुल, और ये बात उन्होंने कही थी भगवान महावीर और हनुमान जी के जन्मदिन के खास मौके पर। और देखिए, ये दोनों ही ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने बड़े पद मतलब राजसी पद छोड़कर सेवा और धर्म का रास्ता चुना।
सही।
तो आज हम पूज्य गुरुदेव के नजरिए को ही समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों वे मानते थे कि समाज और राष्ट्र के लिए धर्म तंत्र यानी जो नैतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था है वो राजतंत्र मतलब राजनैतिक व्यवस्था से कहीं ज्यादा जरूरी और ताकतवर है।
जी बिल्कुल, और उन्होंने शुरू में ही ये बात साफ कर दी थी।
हाँ, क्या कहा था उन्होंने?
उनका कहना था कि देखो, राजतंत्र की शक्ति सीमित है, वो बाहर तक है, भौतिक जीवन पर नियंत्रण कर सकती है, लेकिन धर्मतंत्र वो तो हृदय पर शासन करता है, वो अंदर से बदलाव लाता है।
अच्छा।
और उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं।
इसीलिए उन्होंने भगवान महावीर का उदाहरण दिया है ना कि वो राजकुमार थे, चाहते तो राजा बनते।
हाँ, पर संत बने। उन्हें लगा कि एक संत की शक्ति उसका प्रभाव राजा से कहीं ज्यादा है।
और दिलचस्प बात यह है कि पूज्य गुरुदेव ने इसे सिर्फ कहा नहीं अपने जीवन से जोड़ा।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो खुद कांग्रेस आंदोलन में सक्रिय रहे, जेल भी गए।
जी,
लेकिन फिर उन्होंने राजनीति छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि राजसत्ता का दायरा वो सीमित है। उन्होंने तुलना की जैसे एक प्रांतीय मंत्री का असर अपने प्रांत तक होगा, पर शंकराचार्य का प्रभाव वो पूरे भारत पर दिखता है। तो ये दिखाता है कि वो धर्म सत्ता को, चरित्र निर्माण को कितना अहम मानते थे।
मतलब सीधी सी बात है, राजसत्ता बाहर का सिस्टम देखती है और धर्म सत्ता इंसान के अंदरूनी चरित्र को बदल सकती है।
बिल्कुल, जमीर को जगा सकती है।
पर गुरुदेव सिर्फ व्यवस्थाओं की तुलना करके नहीं रुके, उन्होंने कानून की सीमाओं पर भी सवाल उठाया जो आज भी उतना ही मौजू है।
हाँ, ये बहुत बहुत गहरा सवाल है। उन्होंने पूछा कि क्या कानून बना देने से या जेलें बना देने से क्या भ्रष्टाचार रुक गया,
क्या मिलावट बंद हो गई या कोई और पाप होना बंद हो गया?
नहीं हुआ।
नहीं,
उनका तर्क था कि कानून इंसान की नियत को, उसकी इच्छाओं को नहीं बदल सकता।
तो फिर असली बदलाव कहाँ से आएगा, ये सवाल उठता है।
हाँ, और पूज्य गुरुदेव के अनुसार ये शक्ति केवल धर्म तंत्र में है, इंसान की इच्छाओं को, उसके चरित्र को बदलने की शक्ति। समाज पर जो असली अंकुश है वो केवल कानून का नहीं बल्कि धर्म का, ईश्वर के भय का, नैतिकता का होता है।
ये तो हमने देखा भी है, कितने ही बड़े पदों पर बैठे लोग कानून जानते हुए भी
हाँ गलत करते पाए जाते हैं, तो कानून का डर काफी नहीं है।
तो अगर कानून काफी नहीं तो फिर असली शक्ति कहाँ है? पूज्य गुरुदेव ने इसका क्या जवाब दिया?
उन्होंने गांधी जी का जिक्र किया, कहा कि असली शक्ति जनता में है।
जनता में कैसे?
जैसे लोग होंगे, जैसी जनता होगी, वैसी ही सरकार वो चुनेगी। उनका एक बहुत अच्छा उदाहरण था, दूध जैसा होगा मक्खन भी वैसा ही निकलेगा।
वाह, बहुत सीधी और गहरी बात।
इसका मतलब साफ है, अगर नागरिक मतलब हम लोग अपने वोट की कीमत नहीं समझते, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक नहीं है और बस स्वार्थ में या लालच में या डर से वोट देते हैं, तो फिर अच्छी सरकार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?
सही बात है, यानी सरकार बदलने से पहले जनता को बदलना होगा।
बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव का यही मानना था, असली काम सत्ता पाना नहीं बल्कि जनता को जगाना है, उन्हें उनके नागरिक कर्तव्यों का बोध कराना है।
ये जो जनता को जगाने की बात है, इसमें सेवा का भाव भी जुड़ा है ना? जैसे उन्होंने हनुमान जी का उदाहरण दिया।
हनुमान जी, वो चाहते तो राम जी की सरकार में बहुत बड़े मंत्री बन सकते थे, पद दे सकते थे।
बिल्कुल,
पर उन्होंने क्या चुना? सेवा का कठिन मार्ग। तो पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जब लोग सत्ता से ज्यादा सेवा को महत्व देंगे तभी राष्ट्र आगे बढ़ेगा।
और सिर्फ पौराणिक उदाहरण नहीं, उन्होंने असल जीवन के उदाहरण भी दिए। स्वामी केशवानंद का जिक्र किया आपने।
हाँ, स्वामी केशवानंद, सोचिए जरा, बिना सरकारी मदद के, सिर्फ लोगों के सहयोग से, जनशक्ति से 350 गांव में स्कूल खोल दिए, 7 कॉलेज बना दिए, लोगों को स्वावलंबी बनाया। ये है जन जागरण की ताकत।
ये समझना भी जरूरी है कि पूज्य गुरुदेव के लिए धर्म या अध्यात्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या मरने के बाद क्या होगा ये जानना नहीं था।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए असली धर्म था अपनी जिम्मेदारियों को समझना और निभाना, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, सेवा भाव, यही सच्चा धर्म था। वो तो कहते थे कि नागरिकों को उनके कर्तव्य सिखाना ही ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है।
अच्छा,
क्योंकि अच्छे नागरिक ही तो एक अच्छा राष्ट्र बनाते हैं, ये पहली शर्त है।
तो सब बातों को मिलाकर देखें तो पूज्य गुरुदेव का राजनीति में न जाना, सत्ता से दूर रहना, ये कोई मजबूरी या पलायन नहीं था।
नहीं, ये एक सचेत चुनाव था, एक सोची समझी रणनीति।
वो मानते थे कि धर्म सत्ता का क्षेत्र कहीं ज्यादा बड़ा है, ज्यादा प्रभावशाली है।
बिल्कुल, उन्होंने राष्ट्र को एक पक्षी की तरह बताया जिसके दो पंख हैं, एक राजसत्ता और दूसरा धर्म सत्ता, जिसे वो जनसत्ता या लोकसत्ता भी कहते थे। उनका कहना था कि ये धर्म सत्ता वाला पंख कमजोर हो गया है, और जब तक ये पंख मजबूत नहीं होगा, राष्ट्र सही उड़ान नहीं भर पाएगा।
उन्होंने इतिहास से भी उदाहरण दिए।
हाँ, चाणक्य का, समर्थ गुरु रामदास का, कैसे धर्म सत्ता ने हमेशा राजसत्ता को सही दिशा दी है। उनका मूल विश्वास यही था कि अगर जनता को बदल दिया जाए, उसके चरित्र को ऊंचा उठा दिया जाए,
तो
सरकारें अपने आप सुधर जाएंगी, अच्छी सरकारें अपने आप बनेंगी। असली काम नीचे जड़ों में करना है।
तो पूज्य गुरुदेव का ये उद्बोधन हमें यही याद दिलाता है कि बाहरी सिस्टम बदलने की भागदौड़ से पहले अंदरूनी बदलाव पर ध्यान देना होगा। व्यक्तिगत और सामाजिक चरित्र का निर्माण, असली शक्ति तो लोगों की अपनी जागरूकता, उनकी समझदारी और उनके नैतिक बल में ही है।
जी, और ये आज भी उतना ही सच है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भी आज के समय में एक नागरिक के तौर पर समाज के नैतिक उत्थान के लिए, इस जनशक्ति को जगाने के लिए हमारी अपनी क्या भूमिका हो सकती है।
ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए आज इसी विचार के साथ यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद।